अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञादे तन्ने माम चरणं। आज बड़ी खुशी है कि हम लोग यहां पर आए हुए हैं। फिजी में जहां पर हम हिंदू सनातन धर्म के वंशधर हैं, हम आज उनसे मिलकर के हमें अपार खुशी हो रही है। विशेष करके हमें महान संत तुलसीदास की यहां पर हमें स्मृति आ रही है, उनका स्मरण हो रहा है। यद्यपि पहले वाल्मीकि रामायण था किंतु इस महापुरुष महासंत ने सारे विश्व में अत्यंत सरल सहज सब भाषा में आराम की गाथा विश्व में सर्वत्र उन्होंने प्रचारित की। हमारी संस्कृति का भारत वैदिक ज्ञान और संस्कृति का एक अपूर्व धरोहर है, इसलिए यहां प्रवेश करते ही जब इसका नाम मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इसलिए अपने सभा के प्रवचन के प्रारंभ में मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। यहां हम थोड़ा सा एक परिचय दे दूं कि हम लोग भारतवर्ष में मथुरा वृंदावन में रहते हैं। घर बार छोड़कर संसार संपूर्ण रूप से छोड़कर के वृंदावन में जहां राधा कृष्ण की परम पुनीत परम पवित्र लीलाएं मधुर लीलाएं हुई, वहीं पर गिरिराज गोवर्धन जमुना नदी राधा कुंड श्याम कुंड वहीं पर कदम्ब कानन इत्यादि हैं, वहां पर बंशी बट है, वहीं हम लोग रहते हैं, वहां से हम आए हैं। किस लिए आए? कुछ ब्रज का संदेश देने के लिए जो हमारी सनातन धर्म का प्राण है। कुछ लोग गंभीर अध्ययन नहीं होने के वजह से सनातन धर्म किसे कहते हैं नहीं समझ पाते। सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल करके तब फिर अपने प्रवचन में आऊंगा। ये भी जरूरी है, हमारे भाई बंधु लोग, हमारी माताएं और बहनें भी इस चीज को सुन करके समझेंगी। जहां हमारा सनातन धर्म क्या है, हम उसी से निकले हैं। हमारी सनातन वैदिक ज्ञान क्या है, सनातन धर्म कहते हैं किसे, इसलिए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल करके आगे चलूंगा। पहले बात ये समझेंगे, सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है। हम अभी जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, सुनने के साथ ही साथ में वो भूतकाल बन जाता है। जो कुछ अभी देखा, अभी जो देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, मैं गया कहने के साथ साथ भूतकाल हो गया। इस जगत में वर्तमान नहीं है, कुछ भविष्यत है और कुछ भूतकाल है। एक जगह है जिसको बैकुंठ कहते हैं, साधुओं का हृदय है, बैकुंठ गोलोक वृंदावन है, साकेत है, ये सनातन स्थान है। जिस चीज का जन्म नहीं, मरण नहीं, परिवर्तन नहीं, जो एक रस सब समय हो, जो पुराना और परिवर्तित नहीं होता, जो सदा एक रस रहता है, उसका कभी अभाव नहीं है, वो है सनातन। हम जो कुछ इस आंखों से देखते हैं, ऐसी कोई चीज है जो जन्मती नहीं है, मरती नहीं है और पुराना नहीं हो जाता है, अंत में नष्ट नहीं हो जाता, ऐसा कोई चीज है, आंखें उस चीज को नहीं देख सकती। आंखें जिन चीज को देखती हैं, हमारे सेंस जिनको ग्रहण करते हैं, इंद्रियां जिनको उपलब्धि करते हैं, वो सभी चीज मॉर्टल है, अनित्य है, नित्य नहीं है, सनातन नहीं है। सनातन माने होता है सनातन, तन धातु का अस्त विस्तार होता है, जो सदा है, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, इसका जन्म मरण नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है, इस पर थोड़ा सा विचार। यह शरीर जिसको आप कहते हैं मैं, मेरा नाम कोई भी रख लीजिए, मुकुंद जी या कोई भी नाम, यह शरीर जिसको हम लक्ष्य करते हैं, इसका जन्म हुआ कुछ दिन पहले, 40 वर्ष पहले, 10 दिन पहले, 100 वर्ष पहले, फिर ये कुछ दिनों के बाद में पुराना हो जाएगा, इसके बाद में सड़ गल जाएगा, इसके बाद में समाप्त हो जाएगा। यह घर बना है, किसी दिन बना, फिर किसी दिन टूट जाएगा, अंततः प्रलय में तो जरूर ही टूट जाएगा। इसलिए इस संसार की कोई चीज भी नित्य और सनातन नहीं है। हाँ, इस शरीर में रहने वाला जो है, शरीरी जिसको कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो नित्य सनातन है। इस शरीर में दो चीजों को समझना चाहिए, एक आत्मा और एक समस्त आत्माओं का जो परम है, श्रेष्ठ है, सबका संचालन करने वाला है, सबका साक्षी और नियंता है, जिससे विश्व ब्रह्मांड का की सृष्टि होती है, सृजन होता है, उससे पालन पोषण होता है, अंत में उसी में फिर मिल जाते हैं, वो है परमात्मा। और एक जो इस शरीर में रहते हुए भी परमात्मा की उपलब्धि नहीं कर पाता है और समझता कि मैं ही करने वाला हूं, मैं आई एम डूअर, मैं करता हूं, भोगता हूं, मैं किसी, मेरा नाम ये है, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, मैं ईसाई हूं, बौद्ध हूं, क्रिश्चियन हूं, मैं जानवर हूं, ये सब जो उपलब्धि होती है, तो ये सब अनित्य हैं। किंतु इसमें रहने वाला जो आत्मा है, जो भोग करता है सुख दुख आदि, मालूम नहीं जी मैं कौन हूं, वो अभी आत्मा इसके से। और समस्त आत्माओं में जो विराजमान रहता है वो परमात्मा है, वही हमारे कृष्ण है, वही हमारे राम है, वही हमारे तत्व है। इसलिए इस चीज को अब थोड़े से और विश्लेषण करके थोड़ा सा बतलाऊं। सबसे पहले इस सनातन धर्म को सनातन वस्तु को प्रकाश करने वाले हमारे वो वेद हैं। वेद माने क्या है? वेद माने कोई कागज का टुकड़ा नहीं, कोई किसी चीज का टुकड़ा नहीं, वेद का नाम है ज्ञान। वेद टू नो, क्या ना जानना, जानना। वेद माने होता है इंद्रियां, वेद माने होता है अनुभूति, वेद माने होता है उपलब्धि, और विशेष अर्थ में इसका वेद का अर्थ होता है ज्ञान जानना। वेद वेदयति, जो जानता है हमें। ये आया कहां से? इसलिए सबसे पहले ये समझो, हम भगवत दास हैं, प्राणी मात्र, केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग जितने ये हैं, यहां तक कि जानवर, वृक्ष, लता, गुल्म, ये सभी, इसके अंदर में प्राण है, जिनमें चेतनता है ना? वो चेतन है। तो भगवान के दास होने पर भी भगवान को भी भूल करके इस संसार में हम समझते हैं कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, हम देवता हैं, हम राजा हैं, राष्ट्रपति हैं, हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हम बौद्ध हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, जानवर हैं, हम सुअर हैं, गधे हैं, ये सभी समझ रहे हैं। किंतु हम हैं असल में क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता में इसी को कहा गया, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। एक ही चीज हमारे वेदों में, शास्त्रों में, रामायण में, पुराण में, वेदों में एक ही चीज है, दो चीज है ही नहीं। एक ही उस सनातन के लिए बतलाने के लिए, वो सनातन क्या चीज है, हमारी आत्मा क्या है, हम कौन है, इस चीज को दिखलाने के लिए हमारा कर्तव्य क्या है। तो प्रभु कृपा करके पहले अक्षर ब्रह्म या शब्द ब्रह्म के रूप में आए, अवतरित हुए इस जगत में। बिना भगवान के, भगवान को कोई जना नहीं सकता है। सोई जाने जह देह जनाई, जिसको वो जना देंगे वही जानेगा, दूसरा उनको नहीं जान सकता है। हमको बस यही होना है, सरेंडर करना है उनके चरणों में, अनकंडीशनली सरेंडर करें। मैं आपका हूं, मैं मूर्ख हूं, नहीं जानता। तो ये शब्द ब्रह्म के रूप में आते हैं, वो क्या है? ओंकार। पहले इसी रूप में आते हैं, ओंकार भगवत तत्व का आधार है। जैसे जल का आधार क्या है? जल का आधार समुद्र है, अथवा समुद्र, जो सारे विश्व में तीन भाग वो पानी है, बाकी एक भाग में स्थल है। तो जलों का आधार ये समुद्र है, किंतु जल का पानी नहीं पी सकते, समुद्र का पानी नहीं पी सकते, क्यों? खारा है। समुद्र का पानी पीजिए तो देखिए पेट पतला गड़बड़ हो जाएगा। एक पक्षी भी उस पानी को नहीं पीती, मनुष्य की तो बात क्या, फिल्टर करने के बाद में यदि किसी प्रकार से वैज्ञानिक अनुसंधान हो और पानी में से नमक निकाल दिया जाए तो हो सकता है पी सकते हैं। किंतु भगवान ने बड़ी सरल प्रोसेस बनाया है, तरीके बनाए हैं। समुद्र का पानी वेपर के रूप में बदल करके, बादलों के रूप में ऊपर में जाकर के बरस करके मीठा पानी बरसा देता है। वो पानी है कहां का? समुद्र का। खारा पानी का, जिसको नहीं पी सकते। उसी तरह से ओंकार है, इसमें रूप नहीं दिखता। जो ओंकार का क्या रूप है? रूप नहीं देखता, उसमें कोई गुण नहीं दिखता। उसमें हम ओंकार को अपना बाप माने, न मैया माने, न पुत्र माने, न भैया माने, न मित्र माने, न सखा माने, न उनको मैया माने, पुत्र माने, न उनको हम अपना क्या माने, उनको अपना प्रियतम माने ओम को। इसलिए ओंकार से प्रभु ने प्रकट किया किसको, गायत्री को ना, ओंकार से गायत्री हुई। गायत्री का प्राण ओंकार है, किंतु गायत्री कुछ फिल्टर्ड वे है, कुछ विशुद्ध रूप में है। इनका गान करने से गायत्री त्राण हो जाता है, किसका, जीवों का, जो भगवान को भूले हुए हैं उसको पुनः भगवान को प्राप्त होकर के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसी को मुक्ति कहिए, जो कुछ कहिए। ये भी नहीं समझ पाते हम सहज रूप में, तो वो भगवान ने कृपा करके ये गायत्री को वेदों के रूप में प्रकाशित कर दिया। ये वेद त्रय कहलाते हैं, तीन है तो चार, किंतु कहते हैं इसको त्रय, क्यों, वेद एक ही था। व्यास जी ने इसको तीन भागों में विभाग कर दिया और जो बाकी रह गया वो मूल रह गया। जो अथर्व वेद एक था उसको विषय के अनुसार में उसे तीन भागों में विभाग कर दिया, जो बाकी रह गया वही तो अथर्व रह गया, बाकी हो गया साम जजु ऋक। वेद एक ही है किंतु इसको वेद त्रयी कहा गया। बड़ा कठिन सब लोगों के, ये सतयुग में समझने वाले थे, द्वापर में समझने वाले नहीं रहे, इसलिए व्यास जी ने इन वेदों का संकलन करके इनमें से एक ब्रह्म सूत्र बनाया। वेदों के दो भाग प्रधान रूप से हैं, एक मंत्र भाग और दूसरा कहलाता है उपनिषद विभाग। मंत्र भाग कर्म कांड यज्ञ इत्यादि हैं, हवन होता और ये सब होते हैं, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और फिर वहां से गिर पड़ते हैं। ते तंग भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम खीने पुण्य मर्तलोकम विशंति। स्वर्ग में जाकर के भाई वहां शांति नहीं मिलेगी, काम क्रोध लोभ मद नहीं जाएगा और भोगों को फिर भोग करके फिर इस जगत में आना पड़ेगा। इसलिए उपनिषद कांड एक है। उपनिषद माने क्या, उपनित, अर्थात जो विद्या हमें भगवान ब्रह्म के जो जगत का सृष्टा स्थिति प्रलय करने वाला है उसके समीप जो लाती है विद्या, उप उप माने समीपे, ये उपनिषद में उप है, ये निसर्ग है, जो भगवान के निकट ब्रह्म के निकट हमें परतत्व जो जगत से सृष्टि इत्यादि जिसे उसके निकट जो विद्या पहुंचा देती है उसका नाम है उपनिषद। किंतु उपनिषद विद्याएं भी धीरे धीरे लुप्त होने लगी, क्यों, ब्रह्मचर्य नहीं रहा, शुद्ध वायुमंडल नहीं रहा, शुद्ध पानी भी नहीं मिला, आजकल शुद्ध हवा भी नहीं मिलती, पानी का भी प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, लोगों के चाल चलन का प्रदूषण, कुछ दिनों के बाद में समुद्र में मछलियां भी नहीं रहेंगी प्रदूषण से, कुछ दिन में आदमी का जीवन भी दुभर हो जाएगा, शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी। भगवान ने बिना पैसे की यह सब चीजें दी, अब आदमी कंट्रोल करके पंखा लगा दिया, बिजली का बिल जाना पड़ेगा आपको वहां, किंतु भगवान नहीं लेता। पानी आपको समुद्र मीठा बना करके दे देगा, उसके लिए भगवान नहीं पैसा ले, और ये लोग क्या करेंगे, सप्लाई करके एक का दस पैसा ले लेंगे और प्रदूषण बनाएंगे अलग से। भगवान कोई भी चीज का मूल्य नहीं देता, वो भगवान बड़ा दयालु है। तो इसलिए उपनिषदों के होने पर भी वो विद्या धीरे धीरे लुप्त होने लगी। इसलिए व्यास जी ने कृपा करके व्यासों के समस्त उसके उपनिषद के समस्त मूल उपदेशों को एकत्र किया और 350 सूत्र उसके लिए बनाए। पहला सूत्र हुआ था तो ब्रह्म जिज्ञासा, भाई ब्रह्म क्या है, जिससे जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय होती है वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के साथ में हमारा संबंध है, उसी के दास हैं, उसको भूल करके है जगत में दुख भोग रहे हैं, जन्म मरण के जंजाल में हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस में पड़े हुए हैं। कोई संसार में सुखी नहीं है, सुखी वही है जिसको आत्मा का रियलाइजेशन आत्मज्ञान हुआ, जो भगवान का भजन करते हैं उनके अतिरिक्त संसार में कोई भी सुखी नहीं है। इस चीज को एकदम समझिए, ये उपनिषदों का विचार है। शरीर मॉर्टल है, अनित्य है। इसमें मैंने जो ये बुद्धि की जो मैं हूं, यह संपूर्ण रूप से भ्रांत विचार है। इस चीज को पहले समझो तो भगवान को पीछे और ब्रह्म को पीछे समझना। किंतु ब्रह्म सूत्र भी धीरे धीरे लुप्त होने लगा, वो भी लोगों के समझ में नहीं आ रहा। तो फिर क्या हुआ, व्यास जी ने कृपा करके उसका अर्थ तात्पर्य सरल शब्दों में श्रीमद् भागवत बनाया। कैसा बनाया उन्होंने, उस एक समय में व्यास जी बड़े दुखी हो रहे थे। मैंने वेदों का विभाग किया, धर्मशास्त्र बनाया, पुराण बनाया, मैंने महाभारत की सृष्टि की, उसमें गीता का ज्ञान दिया, सब कुछ किया, किंतु मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, कुछ अभाव सा लगता है, क्यों जीवन सुखी नहीं है। इतने में नारद जी आ गए, उनके गुरु। गुरु ने पूछा कि तुम्हारा चेहरा आज मुरझाया हुआ है, क्यों प्रसन्नता नहीं है। गुरु जी तो यही तो मैं नहीं जानता, आप हौ रोग के वैद्य हैं, आप नाड़ी पकड़ने से ही बतला सकते हैं जे क्या रोग। रोगी क्या समझे अपना रोग, रोगी अपना रोग नहीं समझता। आप लोग नहीं समझ रहे हैं जे आपका क्या रोग है, हम लोग कुछ कुछ समझ रहे हैं, और हमारे ऊपर वाले लोग हमारे रोग को भी जानते हैं है? हम लोग भी पूरे अभी बद्दे नहीं है, अभी बद्दे के कुछ दो चार नुक्से अभी बांधना सीखा है केवल, उनका संदेश हम सुना रहे हैं आपके पास। इसलिए इस चीज को समझिए कि उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना, उन्होंने नारद जी ने कहा जी देखो तुमने बहुत कुछ बनाया, धर्मशास्त्र बनाया, गीता का ज्ञान भी तुमने दिया, तुम जगत गुरु हो बात ठीक है, किंतु तुमने ये नहीं कहा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, नहीं लिखा, और उसकी सरल सहज रूप में कैसे उपासना हो सकती है तुमने नहीं लिखा। वो है कौन, तुमने लिखा ये जगत के प्राणी मात्र का धर्म प्रेम है, और उस प्रेम की पुतली कौन है, कृष्ण है, रसो वैश्य, वो रस स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है। तुमने कहीं लिखा जब वो पर ब्रह्म मूर्तिमान हो करके जसोदा जी के आंगन में खेलता है, और जसोदा मैया उसको अंगुली से ऐसे ऐसे करती हैं जो तुझे गोदी नहीं लूंगी, और वो पर ब्रह्म रोता है, जमीन में लोटपोट करता है, तुमने लिखा कहीं वो प्रेम के वशीभूत है, ये तुमने कहीं लिखा नहीं। तो तुमने लिखा कि वो पर ब्रह्म सबका सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला होने पर भी वो किसी का मित्र है, कि किसी का सखा है, किसी का प्राण बंधु है, किसी का नौकर बन जाता है प्रेम से, लिखा तुमने तो नहीं, तो इसलिए तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कृषाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये सनातन पूर्ण ब्रह्म कौन है, यहां पर मैं सनातन ले आ रहा हूं शास्त्रों से, वेदों में, उपनिषदों में, सर्वत्र ऐसा लिखा। सनातन पहले पुरुष को समझो जो कौन है। कुछ लोग समझते हैं कि ये सनातन पुरुष है, उसका कोई आकार नहीं है। अरे वो सनातन पुरुष क्या रहेगा, ब्रह्म जो आकार भी नहीं धारण कर सकता है, इतनी क्षमता नहीं है, तो वो ब्रह्म क्या होगा। वो तो सर्वशक्तिमान है, उसमें सोल पोटेंसी है, जिसमें जिसकी पोटेंसी नहीं है, जिसमें जिस चीज की सत्ता नहीं, उसे वो चीज नहीं हो सकती। बारु मथे बरु हो यघृत शिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरीय यह सिद्धांत अपे। कभी पानी से घी निकल सकता है, लाख वर्ष तक उसको मंथन करो होगा घी। अरे भाई पानी में पोटेंसी नहीं है घी की। अरे वो तो दूध को मथने से उसमें से मक्खन, मक्खन को पिघलाओ तो घी निकलेगा। बालू को मथने से उसमें से तेल निकलेगा, सरसों को घानी में दे दो तो उसको पीसने से ही उसमें से तेल निकलेगा, और जिसमें तेल की पोटेंसी नहीं है, धूल को, पत्थर को, बालू को घानी में देकर के पीसो तो तेल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जिस ब्रह्म रूप की पोटेंसी नहीं है, जिसका रूप ही खुद नहीं है, बाप को रूप ही नहीं है, तो बेटे को रूप कहां से आएगा? समझ रहे हैं? बाप ही का यदि रूप नहीं है तो बेटे का रूप कहां से आया? इस जगत में देखते हैं करोड़ों रूप हैं, करोड़ियां जी हैं, अरे लाख प्रकार की तो मछली होती है, मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? चार लाख प्रकार के मनुष्य हैं। अरे ऐसे मनुष्य हैं जगत में जो अपने बाप को बूढ़ा हो जाने पर ऊपर फेंक देते हैं, वो लुढ़कता हुआ गिर करके जब मर जाता है उसी को आग में सेक करके खा लेते हैं, ऐसे भी मनुष्य हैं। आप लोग वो मैदे में वो तीन कोनिया क्या होती है, सिंघाड़ा कहते हैं उसे, सिंघाड़ा नाम सुना है?
समोसा,
समोसा सिंघाड़ा, उसमें आलू उबाल करके मसाले देकर के बनाते हैं ना। तो असम में पहाड़ी जातियां अभी भी हैं, वो क्या करती हैं, कुकर को, कुकर होता है ना कुत्ता, उसको आग पर जीवंत तो ही पकड़ करके सेक लेते हैं, उसे गुड़ चना या कुछ खिला देते हैं खूब भर पे, वो खा लेता है, और तब उसको पटक करके मार करके उसे आग पर सेक करके उसको खाते हैं। ऐसे भी जानवर लोग हैं, भगवान को तो जानते ही नहीं है, नंग धड़ंग भी रहते हैं, मनुष्य को मनुष्य भी, अपने बाप को भी मार करके खाने वाले अभी हैं। इसलिए कहा गया है वो लोग कौन हैं? धर्मी नहीं ना पशु भी समाना, वो पशु हैं, पशुओं के चार पर होते हैं, और हम ऐसे मनुष्य हैं, पशु हैं जिनकी पूंछ नहीं है और सिंह नहीं है, ऐसे हम मनुष्य हैं, यदि भगवान को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते। इसलिए नारद ऋषि ने उनको कहा, आप लिखिए प्रेम से कृष्णचंद्र, जो ये भगवत्ता की हद है, राम कृष्ण नृसिंह वामन सब एक हैं तत्वतः, केवल लीला रस के आस्वादन से पूर्णिमा की चांद की भांति एक तत्व हैं। कभी वही कृष्ण के रूप में आए, वही कृष्ण कभी राम रूप में आए, कभी बराह के रूप में आए, कभी मीन के रूप में, दशावतार लीलावतार इत्यादि हैं, वो सब एक ही तत्व हैं, किंतु थोड़ा सा रस वैचित्र है, लीला का वैशिष्ट है। राम रास नहीं कर सकते, मर्यादा के अंदर में बधे हुए हैं ना? राम सीता के अतिरिक्त अब फिर दूसरी शादी नहीं कर सकते, मर्यादा से बधे हुए हैं, और कृष्ण 16,000 गोपियों के साथ में रास कर सकते, जो जैसा जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जैसा हमारा भजन करता है मैं भी उसको उसी रूप में उसका फल देता हूं। ये कृष्ण के लिए, रामचंद्र जी कृष्ण ही हैं, किंतु जगत को मर्यादा सिखाने के लिए राम बने हुए हैं। और कृष्ण कौन है? ये भगवत्ता के मूल हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वेदों में भी ऐसा लिखा गया, उपनिषदों में भी ऐसा कहा गया, हमारे तुलसीदास ने भी इन सब शास्त्रों के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। हमारे तुलसीदास जी के रामायण को भी वेद से कम मत समझेंगे, श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन अनुवाद है वो एकदम, उसमें समस्त निगम आगम वेद पुराण सब उसमें भरा पड़ा हुआ है। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी भजिय राम सब काज विशाख, श्रुति सिद्धांत, श्रुति माने वेद उपनिषद निगम आगम रामायण पुराण सब क्या कहते हैं? भजिय राम सब काज विशारी। अरे भाई यदि कल्याण करना चाहते हो सब कामों को भी बंद रख करके भगवान का भजन कर ले, नहीं तो का बरसा यदि कृषि सुखानी, जब ही मर ही जाओगे तो फिर क्या होगा, कुछ कर लो। इसलिए व्यास जी नारद जी की बात मान करके उन्होंने कृष्ण का लीला चरित्र लिखाया। निगम कल्प तरोर गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संजितम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभावुका। यदि कल्याण करना चाहते हो अपना तो श्रीमद भागवत का श्रवण करो, उसका कीर्तन करो। यदि एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण, एक पद कुछ भी सुनो तो उसका कल्याण ही कल्याण हो, किंतु जीवन में आचरण करो। इसलिए वेद गीता इत्यादि जो हैं ये कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये ज्ञान के मूर्तिमान विग्रह हैं, इस चीज को समझो। इसलिए कहते हैं कि ये सनातन कौन है, कृष्ण के लिए बतलाया, अहो भाग्यम नंद गोप्र जो कुशाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म है कौन, कृष्ण। पहले इस चीज को समझो, और दूसरी चीज क्या सनातन है ये समझो। एक और चीज सनातन है, गीता को आप लेकर के थोड़ा सा यहां चलिए, और जो नित्यो शाश्वतो अयं पुराणो हन्यते बाने न हन्य माने शरीरे नित्य सर्वगत स्थाणु रचलम अयम सनातन। दूसरा एक शरीर में रहने वाला एक आत्मा है हम, ये भगवान का अंश है, इसलिए भगवान में जो जो गुण है इसमें भी है, किंतु अणु होने के नाते ये जीवात्मा माया के द्वारा आच्छादित हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा भगवान ब्रह्म है, मुक्त हो जाने पर हम ब्रह्म में मिल जाएंगे, गलत है यह बात, सर्वथा गलत है। कभी भी जीवात्मा परमात्मा भगवान नहीं हो सकता है, हम उनके दास हैं और दास ही रहेंगे, इस चीज को याद रखो। ब्रह्म नहीं हो जाएगा मुक्ति होने के बाद में, ब्रह्म ब्रह्म ही रहेगा, जीव जीव ही रहेगा, किंतु शुद्ध होकर के उसकी सेवा कर सकता है, बस इतना कर सकता है। तो इस शरीर में रहता हुआ अभी हम बद्ध जीव हैं, कुछ मुक्त जीव हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, कुछ ब्रज में सेवा करते हैं, कुछ बैकुंठ में, कुछ राम के यहाँ, सभी एक जैसे वो मुक्त जीव है, उस संसार में उन्होंने देखा ही नहीं। और हम लोग भगवान को प्रारंभ से ही भूलने की वजह से 84 लाख योनियों में भूल भटक रहे हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम समझो, ये शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है ये नित्य है, अजर अमर है, इसका जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, शरीर का जन्म और मरण है, जिसने जन्म लिया वो मरेगा, किंतु आत्मा अजर अमर है। इसको शास्त्र काट नहीं सुखा सकते, पानी सुखा नहीं सकती, हवा नहीं सुखा सकता, ये कुछ भी उसको स्पर्श नहीं करता। इसलिए समझो, मैंने तुम्हें आज दे रहा हूं जो उपदेश, आज से करोड़ों वर्ष पहले मैंने सूर्य को ये उपदेश दिया, इसलिए कि फिर से इसकी याद आए। इसलिए दूसरा सनातन है कौन, जीवात्मा, अभी भगवान को भूल गया, क्यों, अभी अणु है। इसलिए कहते हैं इस सनातन जो जीवात्मा है उसका उस परमात्मा के प्रति, उस परब्रह्म के प्रति, कृष्ण के प्रति जो तैयधारावत स्नेह है, प्रेम है, इसका नाम सनातन धर्म है। इस चीज को ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें प्रेम नहीं है, है कोई प्राणी जो सुख नहीं चाहता हो, आनंद नहीं चाहता हो? आप लोग यहां पर किस लिए आए, सारा दिन तो घर में काम किया, परिश्रम किया, कुछ जाकर के सुनेंगे अपने कल्याण के लिए, इससे हमको भविष्य में सुख मिलेगा, इसलिए। एक आदमी नौकरी करता है किस लिए, सुख के लिए। एक आदमी गाय पालता है किस लिए, दूध मिलेगा। इसलिए जो कुछ भी हम सवेरे से शाम तक रात में जो कुछ भी करते हैं सुख के लिए करते हैं, कर्मण्यारपमान दुखते सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासं मिथुनीचारिणाम। हम जो कुछ करते हैं सुख के लिए करते हैं, किंतु सुख नहीं होता। इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा आप, भारत की प्रधानमंत्री थी और उनके दोनों बेटे थे, एक बेटा तो पीछे से प्रधानमंत्री हुआ, उसको भी गोली से उड़ा दिया, गांधी जी, इंदिरा गांधी को भी उड़ा दिया, गांधी जी को भी गोली से मारा, और दूसरा बेटा जहाज से गिर करके मर गया। लाखों करोड़ों डॉलर्स उनके स्विस बैंक में कहां कहां सब जमा थे। क्या हुआ, सुख मिला? नहीं मिला। रुपए पैसे से शांति जगत में नहीं मिल सकती है। इसलिए जो हम उनको भूलें, अभी भूल करके हम सुख चाहते हैं। जब पत्नी से सुख नहीं मिलता है, बेटों से सही सुख नहीं मिलता, तो कुत्ते पालते हैं। किस लिए? इसलिए कि पत्नी धोखा देकर के फिर दूसरे के पास में चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा। इसलिए बैंक का पूरा अकाउंट उसके नाम से नहीं करते हैं, अपने लिए रखते हैं, उसका उसके लिए रखते हैं। बेटी और बेटे के लिए भी पूरा नहीं देते। किस लिए? विश्वास नहीं। किंतु कुत्ते पर विश्वास रख सकते हैं, नमक हराम नहीं है उसका। इसलिए कुत्ता हमारे पास में रहेगा, हमारी रक्षा करेगा, उस पर विश्वास, क्योंकि प्रेम कहीं ना कहीं होना चाहिए। यदि कुत्ता भी नहीं तो अपने सिर के केसों के प्रति ये प्रेम रहेगा, उसको भी 10 बार संवारेंगे। इसलिए ये प्रेम कहीं नहीं आया। क्यों? ये अनादि नित्य सनातन है। ये प्रेम जो था ये भगवान के प्रति लगना चाहिए था, उनके प्रति, क्योंकि भगवान का अंश है, ये सनातन है। जीवात्मा सनातन है और हमारे कृष्ण या भगवान सनातन है। इन दोनों का जो रिलेशन है, संबंध है, ये भी सनातन है। ये क्या है? यही प्रेम है। इसी प्रेम की प्रथम अवस्था जब जगत में आता है तो उसको कहते हैं श्रद्धा। पहला विकास भक्ति का विकास, बीज जिसको कहते हैं। क्या? संतों के समागम में, संतों के पास में कुछ हरि कथा सुनते हैं और उस समय हम जानते हैं कि भगवान के बिना सेवा के कोई भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए जब उसके हृदय में ये भाव आता है, पहला भाव, ये भाई लाख करो किंतु बिना भगवत भक्ति के हमारा कल्याण नहीं होगा, भगवत ज्ञान के नहीं होगा, जब हृदय में आता है तो कृष्ण की भक्ति करने से हमारे सारे समस्त जगत के काम करना हो गया, यह विश्वास हो जाता है, तो इसका नाम है श्रद्धा। ये भक्ति का, प्रेम का पहला विकास इस संसार में है। यही श्रद्धा बढ़ते बढ़ते साधुओं के संग में, बिनु सत्संग न पाव ही प्राणी, नहीं मिलेगा। भक्तिस्तु भगवत संगे न परिजायते, सत्संग प्राप्यते पुंभि पूर्व जन्म सुकृति संचितैः। शास्त्र में ऐसा कहा गया, भागवत में कहा गया, पुराणों में कहा गया, सब जगह ऐसा कहा। तुलसीदास जी ने भी कहा, क्या कहा? बिना भगवत भक्ति के सुख नहीं होगा। उन्होंने 9 उदाहरण दे बतलाए। क्या 9 उदाहरण बतलाया? पहला, कमठ पे ईठ जवरु जाम ही बारा। कमठ माने होता है कछुआ। कछुआ के पीठ के ऊपर में रोए होते हैं कि नहीं होते हैं? केश नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम युक्ति के लिए मान लेते हैं, पलिक कछुए के पीठ पर केश उग जाए। दूसरी बात, बंध है असुत बरु का ही मारा, बांझ के बेटे को उसने मार डाला। ये सत्य है कि क्या है? होता है, विचार करके देखो।
बच्चा ही नहीं तब तो बांध
है। अरे जिसको बच्चा ही नहीं उसको कहते हैं बंध्या। तो उसको बच्चा तो है नहीं, आ उसने मार दिया तो ये तो झूठ बात है। मान लिया ये भी सत्य है, ये भी सत्य हो सकता है। हिमते प्रगट अनल बर होई। आग कहां से पैदा होती है? लकड़ी के संघर्ष से या जलाने से। बर्फ से आग शांत हो जाती है, किंतु मान लो ये बर्फ से आग पैदा होती है, होता है कभी? किंतु हमने मान लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, ये 3 हो गए। चौथा, नभ भव फूल ही बरबद बहुविध फूला। आकाश में फूल खल गए हैं, एक आदमी ने कहा, आकाश में फूल खिले हुए हैं। होगा? आकाश से सुनने में उसमें फूल कहां से आएंगे, उसमें पौधे कहां से आएंगे? वो तो पृथ्वी पर हो सकता है। ये भी मान लिया, आकाश में फूल खिल सकते हैं। और क्या है? अंधकार बरु रविशि नशावे। अंधकार सूर्य को नष्ट कर दिया। अरे अंधकार तो सूर्य के आने से ही दूर हो जाता है, ये तो नष्ट नहीं है, मान लिया। और सस बरु जाम ही सशीष विषाना। खरगोश देखा है आप लोगों ने? खरगोश को सिंग नहीं होती, छोटा सा जानवर होता है, चलता है सफेद और दूसरे दूसरे रंगों का, उसको कभी भी सींग नहीं होती। मान लो उसको सींग भी हो गया, ये भी मान लेंगे, ये सात और दो और पारी मथे बर हो यघृत शिकता थे बरुते पिनुहरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अबे। पानी को बिलोने से भले ही घी निकल आए और रेती को पीसने से भले ही क्या निकल आए, तेल मान लूंगा, किंतु बिनु हरि भजन अनुभव, बिना भजन के कभी भी शांति और सुख नहीं हो सकता है। इसलिए हे बंधुओं, भगवान का राम का राम लो। कलयुग में नाम सबसे प्रधान है, इससे बढ़कर के और कोई नहीं। कोई भी नाम जो प्रिय हो, राम कृष्ण इत्यादि, विशेष करके कलयुग का महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, जरूर करना चाहिए। कैसे, जरा स्पेशल सुर में यू शुड डू महामंत्र। सभी लोग आप इनके साथ में करेंगे, इसके बाद में फिर मैं बतलाऊंगा। के मुख में समा जाते हैं, इसलिए आप लोग जरूर करेंगे। जब महामंत्र या कोई कीर्तन हो तो जरूर करना चाहिए, जानते हैं तो। इसलिए अभी करेंगे महामंत्र हरे कृष्ण, बहुत सरल सहज है, आप लोग कर सकते हैं। लज्जा करने की जरूरत नहीं, मैं महिला हूं, मैं लड़की हूं, मैं नहीं कर सकती। पुरुष मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान और मैं इनके साथ में कीर्तन, ये सब नहीं मत करना, इसलिए करो कि ब्रह्म परब्रह्म भगवान कृष्ण ये परम तत्व, ये सनातन तत्व है एक, और उनका अंश जो जीव है ये भी सनातन है, किंतु माया के अंदर में भी पड़ा हुआ है, और ये शरीर को समझता है कि मैं हूं, किंतु शुद्ध जीवात्मा सभी भगवान के नित्य दास है। और जीवों के साथ में भगवान का जो संबंध है, उसी संबंध का नाम है सनातन धर्म। वो क्या है, जीव नित्य काल भगवान की सेवा करता है। कैसे सेवा करता है, पांच प्रकार से सेवा करता है। या तो करेगा सनक सनंदन सनातन की तरफ, संबंध रहित रूप में उनको प्रभु देखता है, अपने को दास देखता है, साधारण कोई संबंध नहीं। ये इसको शांत रति या शांत कहते हैं संबंध। हनुमान का राम के प्रति जो संबंध है, ये दास और प्रभु का संबंध है। कृष्ण आने पर भी राम कहेंगे, हनुमान जी कहेंगे प्रभु इस बंसी को भी हटा करके यदि धनुष बाण को ले लो तो मैं समझूंगा कि आप राम हैं, तो हमारा सिर नौ सकता है। राम में उनकी निष्ठा है, जति भी वो जानते हैं श्री नाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनी तथापि मत सर्वस्व राम कमल लोचन, ये उपास्य की निष्ठा है। कहते मैं जानता हूं श्रीनाथ नारायण, और श्री माने लक्ष्मी, श्री माने होता है राधिका, राधिका के पति जो आप हैं राधाकांत राधानाथ, ये कृष्ण, मैं जानता हूं कि दोनों एक ही तत्व है। तत्व की दृष्टि से कैसे, एक उपमा के द्वारा समझिए। चंद्र में 15 कलाएं होती हैं, 16 कलाएं होती है ना, एकम दो तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पंचमी, पूर्णिमा को होती है। यदि तृतीया का चांद दिखता है तो वो जो पूर्णिमा का चांद है दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, दो चांद हैं, एक चांद है। किंतु एंगल ऑफ विजन से जहां पर हम जिस धरातल पर हैं, यहां से सूर्य चंद्र ढकने से उसकी छाया, सूर्य की पूरी छाया उस पर नहीं पड़ पाती, इसलिए वो तृतीया के रूप में दिख रहा है, किंतु है वो पूर्ण चांद ही। आ रहा है समझ में, चांद 15 नहीं है, एक ही चांद है, पूर्णिमा का चांद ही पूर्ण चांद है। एक यहां पर इतनी ऊंचाई में पहुंच जाइए जो चंद्र पर पृथ्वी की छाया नहीं पड़ती है और सूर्य पूर्व रूप से पूर्ण चंद्र पर नहीं चमकता, पूरा चमकता है, तो वहां से पूर्णिमा सब आपको दिखेगा। उसी तरह से जब पूर्ण तत्व का बोध होगा तो एक ही तत्व कृष्ण चंद्र के रूप में दिखेगा, और जब वही मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आएगा तो उसको आप राम देखेंगे, केवल उसमें अढ़ाई रस। जब वही तत्व हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए आएगा तो आप नृसिंह रूप में देखेंगे, किंतु है वही पूर्ण कृष्ण ही है, पूर्ण सब एक ही तत्व है, उसका अंश कभी ज्ञान कभी भक्ति कभी कुछ कभी कुछ, रस की दृष्टि से कुछ था कुछ पार्थक्य है। कृष्ण किसी के पति भी हो जाएंगे, प्रियतम भी होंगे, पुत्र भी हो जाएंगे, किसके सखा भी हो जाएंगे, किंतु नारायण किसी के पुत्र नहीं होंगे, है एक ही तत्व। नारायण किसी का पुत्र होता है? उसका जन्म ही नहीं होता, वो अजन्मा है, वैकुंठ में रहता है। उसका कोई मित्र है सखा? नहीं है, उसका सखा नहीं होगा। माता पिता नारायण का नहीं है, वो ऐसी लीला ही नहीं करते। अच्छा रामचंद्र जी को लीजिए, वही कृष्ण ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए हैं। सीता जी को छोड़कर के विवाह कर सकते हैं? नहीं कर। अच्छा उनका कोई सखा है कि नहीं? राम का सखा दो तीन है। कौन? एक तो चारों भैया उनके जो है, तीन भैया, वो भी सखा ही है, और विशेष करके सुग्रीव जी आग के साक्षी देकर के सखा बने थे, और विभीषण और गुहक चंडा जो निषाद राज था, इनके सखा है। किंतु कोई भी राम के सामने सिंहासन पर बैठ सकता है? राम के सामने कोई रामचंद्र की गला बहिया दे सकते हैं, गले में हाथ देकर? सुग्रीव हो, चाहे विभीषण हो, चाहे लक्ष्मण लाल भी हो, अपना जूठा खा करके उनको देंगे? सीता जी देंगी? न लक्ष्मण देंगे, न विभीषण देंगे, न हनुमान देगा, कौन देंगे? इनमें वो भाव लेकर के आए ही नहीं है। जगत को मर्यादा सिखलाने के लिए उस समय कृष्ण आए, यद्यपि वही हैं, इसलिए उनमें इतना ही प्रकाश किया। और कृष्ण को बेटा मान लो तो बेटा, जो बेटा मानता है उसके बेटे बन जाएंगे। यदि उनको कोई मित्र बनाना चाहे, मित्र बना लेंगे, ऐसा कैसा? उसका जूठा खाएंगे, जूठा खिलाएंगे, उसके कंधे पर चढ़ जाएंगे और सखा उनको नीचे पटक देगा, बड़े खुश हो जाएंगे। जब कोई उनकी पत्नी बननी चाहेगी तो 16,108 पटरानियां बना ली ना, हिचक नहीं है, और भी मिल जाए तो कोई बात नहीं। आप लोग भी चाहे ना तो पटरानी उनकी बन सकती हैं, पुरुष होकर के भी पटरानी का रूप में। इसके अतिरिक्त और क्या चीज है? आपके प्राण प्रियतम बन सकते हैं, प्राण बल बन सकते हैं, क्या विवाह हो और ना हो इसकी भी प्रतीक्षा नहीं रखते। किसी को गोप प्रतिका परकीय भाव या मधुर भाव कहते हैं, ये और किसी में नहीं है। इनके सखा हैं श्याम दाम सिदाम वसुदाम, ये क्या करते हैं? कृष्ण को नीचे पछाड़ देते हैं। चारुण मिष्ट को कृष्ण और बलदेव ने पछाड़ा, कंस को भी लेकर एक मिनट में ऊपर से उसको चोटी पकड़ी और नीचे गिरा करके उसके ऊपर में कूद गए, एक सेकंड में प्राण निकल गया, कोई अस्त्र शस्त्र धारण करने का समय नहीं दिया। और वही जब ये सब भाग गए इधर, कुछ मर गए, तो कृष्ण ने और बलदेव जी ने सुबह और श्रीदाम को खींच लिया और टक्कर की लड़ाई होने लगी। कृष्ण को बलदेव उन्होंने श्रीदाम जी ने लेकर के पछाड़ दिया और ताली बज गई और कृष्ण हंसने लगे। ऐसा सखा अपना सखा खाते हैं, कृष्ण को खिलाते हैं जूठा, कृष्ण अपनी मैया का दिया हुआ नहीं खाते, उनका जूठा खाते हैं। यह है मित्र भाव। और प्रियतमा का भाव, किसी गोपी का कृष्ण के साथ में शादी हुई, किंतु राधा कृष्ण क्यों कहते हैं? रुक्मिणी और कृष्ण क्यों नहीं लोग कहते, क्यों नहीं कहते, कारण क्या? वहां पर प्रेम प्रधान है। कौन सा प्रेम? जिस सनातन धर्म को मैं कहा यही प्रेम प्रेम है। इसी प्रेम का पहला विकास इस जगत में श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद में क्या आया? जब अनर्थ दूर हो जाएंगे आप समझे मैं कृष्ण का दास हूं, किंतु अनुभूति नहीं हुई और साधु के संग में हरि कथा सुन रहे हैं और हरि नाम करने में रुचि आ जाती है, नींद नहीं आती। अभी देखिएगा अभी हरि नाम होगा ना, अब तत्व की बात कहूं वेदांत की, नींद आ जाएगी सबको, देखेंगा जी सभी सो जाएंगे। अभी कीर्तन कर रहे हैं, रसीली कथा कुछ बीच बीच में ला रहे हैं, कुछ टेस्ट दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को अभी नींद नहीं आती, नहीं तो इसमें कितने लोग चले जाते, ये कुछ देखा है। इसलिए ये प्रेम का इस जगत में विकास दूसरा है, इसको कहते हैं निष्ठा। जान बुझ जानते इसके अतिरिक्त हमारा कल्याण नहीं है, तब इसको क्या करेंगे? निष्ठा के साथ मन नहीं लगता तभी सुनेंगे, इसके बाद में रुचि आ जाएगी, रुचि आने पर छोड़ने की इच्छा नहीं करेगी, इसके बाद में आ जाएगा आसक्ति, ऐसी आसक्ति हो जाएगी नाम एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ सकती, उसमें आपको रस मिलने लगेगा, और इसके बाद में कृष्ण भक्ति ऊपर से गोलोक वृंदावन से आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगी, कृष्ण उसके रूप में आएंगे। इसको कहते हैं भाव। इसके बाद में जगत में कोई साधन नहीं है भाव कक्षा, इसके बाद में क्या होगा? भगवान की कृपा से, जोग माया की कृपा से, जहां पर प्रकट लीला भगवान की जैसे ब्रज में होती है वहां पर आपका जन्म गोपी के घर में देंगे, वहां पर आपको प्रेम होगा, प्रेम प्रेम टूटने का कारण होने पर भी प्रेम और बढ़ता जाएगा, उसको कहते हैं प्रेम। अभी एक बड़ी सुंदरी कैनेडी को स्त्री मिली, कैनेडी को जानते हैं ना अमेरिका के राष्ट्रपति, जब कैंडी मर गए तो उसने और 10 शादियां की, 10 पतियों को बदल दिया। आपकी स्त्री बड़ी सुंदरी है, रूपवती है, और उसको थोड़ी सी नाक कट गई या अस्पताल में भर्ती हो गई, 10 दिन रही, 15 दिन रही, 1 वर्ष रही, फिर छोड़ देंगे। स्त्रियां भी कितना तक सहेंगे? भारत की स्त्रियां सह सकती हैं, पति लंगड़ा लूल्हा कोढ़ी जैसा भी हो, विवाह एक बार हो गया तो फिर उसको नहीं छोड़ेंगी प्राण जाने तक, ये भारत की संस्कृति है। किस लिए? उस प्रेम को पालने के लिए। अंत में पतिव्रता कहते हैं किसको? पति को छोड़ करके दूसरे को पति न माने, यह है ना पतिव्रता। किंतु अहिल्या, कुंती, तारा, द्रौपदी, मंदोदरी, ये पंचकन्याएं कहलाती हैं। किस लिए? कुंती को 5 पति, द्रौपदी के कितने पति? 5 पति, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इत्यादि। और मंदोदरी को कहते हैं रावण को छोड़कर के विभीषण के साथ में रही, और तारा बाली की पत्नी और सुग्रीव के साथ में रही। आप उसको पतिव्रता न करके कन्या करें जो उसका विवाह ही नहीं हुआ, और उसको प्रणाम करने से पतिव्रता स्त्रियां उनको प्रणाम करती हैं। किस लिए? इसलिए कि पति परम पति भगवान कृष्ण या राम है, इस चीज को समझो, यही परम पति है, पतियों के पति हैं। उन्होंने जिनको ग्रहण कर लिया, इसके बाद में जगत में जैसा भी हो वो परम पति को मानने वाली वही पति प्रता स्त्री है। इसलिए जिन्होंने कृष्ण को अपना प्रियतम मान लिया उसके समान जगत में कोई प्रतिपता नहीं है, इस चीज को समझना चाहिए ना? इसलिए प्रेम का नाता है इनका, विवाह हो और न हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को, ये भाव जिसमें कृष्ण के प्रति आ गया ये संसार में ऊंचा प्रेम है, यही ऊंची सगाई है, इससे बढ़कर के वो कुछ नहीं। गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था यही संसार का आदर्श है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या का चितुपासना बजुपद पर गई न जाकल। गोपियों का प्रेम टॉप का है, ऐसा विश्व में नहीं हुआ, न होगा, न भूतो न भविष्यति। इसलिए प्रेम का मूल चीज है, यही प्रेम हमारे अंदर में कुछ कुछ है, अभी हम भूल चुके हैं। यही प्रेम सनातन धर्म है। एक कुत्ते में भी एक कुत्ती से प्रेम करता है, ये उसी सनातन धर्म का अंश है, किंतु विकृत हो गया है। हम अपने पत्नी से प्यार करते हैं, दूसरी कोई स्त्री को देखा प्यार करने लगते हैं, ये क्यों प्यार? उसी प्रेम का विकार है। यही शुद्ध हो जाने पर, शुद्ध होकर के भगवान के चरणों पर लगने पर, यही सनातन धर्म है। इसलिए जगत का सनातन धर्म एक है, क्या है? भगवत प्रेम। ये बदलेगा नहीं, हम मर जाएंगे ना, जीवात्मा नहीं मरेगी, अजर अमर है। इसलिए इसका यह प्रेम जो धर्म है, यही सनातन धर्म है। हमारे गीता में, भागवत में, रामायण में, पुराण में, वेदों में इसी प्रेम के लिए कहा गया है। इसलिए हम जो समझते हैं, जो भगवान को नहीं मानता उसका भी धर्म सनातन है, जो भगवान की मूर्ति नहीं मानता, जो भगवान की मूर्ति मानते हैं वो भी सनातन, जो भगवान का एकदम नहीं मानते वो भी सनातन। शंकर जी का भजन करो, गणेश जी का भजन करो, सबका भजन करो, ये सनातन धर्म नहीं है। शरीर का धर्म सनातन नहीं है, आत्मा का धर्म सनातन है। विश्व में ऐसा कोई है ही नहीं जो प्रभु से नहीं आया हो, किंतु अभी विकृत है। ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म है आत्मा का धर्म, प्रेम। ये कुत्ते के अंदर में भी है, मछली के अंदर में भी है, मनुष्य के अंदर में भी है। इसी को रिफाइन करके साधु संघ में और कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति लगाना ही सनातन धर्म है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात एक समझो, प्रेम उसको कहते हैं, भक्ति उसको कहते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म ध्यानापृतम अनुकुलीन कृष्णानुशीलन। 9 बजे तक रहेंगे, 8 से आरंभ किया है, उसमें कीर्तन हो गया। तो क्या बतला रहा
है?
अन्याभिलाषिता, भक्ति वो कहते हैं जब हमारे चित्त की वृत्तियां, हमारा तन मन वचन और इसके अतिरिक्त जो भावना है, भाव भाव समझते हैं, जहां तक तन मन वचन नहीं जाते उसके ऊपर में ये भावना है, ये सब चीजें भगवान को प्रसन्न करने के लिए चेष्टाएं हो। तन मन वचन और भाव, सभी चेष्टाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब होने लगी और ये ऐसे तैल धारावत अविच्छिन्न गति से ये होने लगी, जिसमें कोई प्रकार की अपनी कामना नहीं हो और ज्ञान कर्म इत्यादि से रहित हो, तो इसको उन कहते हैं भक्ति। अब एक थोड़ा सा उपमा देकर के मैं आज इस विषय को यही पर समाप्त हुआ, क्योंकि हमारे लिए बोलना भी बहुत अधिक मना है। मैं तो चाहता था ये 3 घंटा बोलूं, लेकिन तो नहीं बोल सकता, कुछ मना है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं पार्ट में, बात बात में हम कह रहे हैं अधिक मत बोलिए, किंतु विषय बड़ा बहुत सुंदर है, जानने लायक है। रामचंद्र लक्ष्मण को और सीता जी को वनवास हुआ, राम को वनवास हुआ, सीता और लक्ष्मण इनके साथ में चित्रकूट में पहुंचे। भरत जी ननिहाल गए थे, उनको कुछ अशुभ लक्षण दिखाई पड़े, बांग अंग फड़कने लगे, आकाश में लाल बादल हो गए, बिना वर्षा ही, बिना बादल के वर्षा होने लगी, और कुत्ते रोने लगे, और जो लक्षण है वो सब प्रकट होने लगे, हृदय कांपने, क्या हो गया? इतने में दशरथ से अयोध्या से दूत पहुंचा है, गुरुजी ने आपको बुलाया है, दोनों भाइयों को, भरत और शत्रुघ्न को गुरुजी ने बुलाया। कहा जा, पिताजी ने नहीं बुलाया, भैया ने नहीं बुलाया, किसने बुलाया? गुरुजी। क्यों, क्या बात क्या है? उन्होंने पूछा तुझसे, मैं अधिक नहीं जानता हूं, गुरुजी ने कहा जी बुला लो। आए, जब अयोध्या के पास में आए तो विधवा नारी जैसे बिखरी पड़ी थी अयोध्या, सुनी। इनके स्वागत करने के लिए पहले महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण सब आते थे, सब लोग आते थे, आज कोई नहीं आया, एक चिड़िया भी नहीं चहकी। सब अयोध्या मानो रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्या मामला? जब कोई नहीं आया, जबकि राजभवन में पहुंचे, ओ हमारे पिताजी होंगे कई कई के, हमारे मैया के घर पर होंगे, चलू वहीं, वहां पर गए, कई कई जी आई, कई कई जी प्रसन्न होकर इनको वरदान देकर के घर में ले जाने, उन्होंने उनके तरफ में देखा, अरे मैया सफेद कपड़ा किस लिए पहन लिया, माथा का सिंदूर कहाँ गया? क्या बात है भैया, हमारे आवागमन करने के लिए, स्वागत करने के लिए राम भैया नहीं आए, लक्ष्मण जी नहीं आए, पिताजी नहीं देख रहा, वो तो रहते तो दौड़ करके हमें आलिंगन कर लेते, बड़े प्यार करते, आज आए नहीं, क्या बात? वो गोलोक सिधार गए, कैसे? राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? वो तो वन चले गए। वन चले गए क्यों? क्या बात हुई? क्या तेरे लिए बेटा, हमने उनसे 14 वर्ष का वनवास राम और राम के लिए मांगा और तुम्हारे लिए राज्य मांगा। हमारे लिए? मुझे लिए तो राज्य की जरूरत नहीं, और राम को हमारे लिए, और लक्ष्मण भी और सीता जी, मैया भी चली गई, कौशल्या बची हैं कि मर गई? बड़ी बड़ी मैया कहां? आज यदि राम नहीं पर यदि हमारे ऊपर में अप्रसन्न होते, क्रोध नहीं करते, तो आज तुम्हें मैं अभी तुरंत मार डालता, तुम्हारी जीवा काट लेता, जिस जीवा से तुमने मांगा। आज से तुम्हारा हमारा यह संबंध माता और पुत्र का नहीं रहा, तुम हमको अभी कभी पुत्र मत कहना, और मैं तुम्हें मैया नहीं कहूंगा आज से। राम जैसा भैया, सीता जैसी मैया, तुमने वनवास दे दिया। कौशल्या के पास गए, उनके चरणों में जाकर के रोने लगे। कौशल्या जी धैर्य नहीं धारण कर सके, उनको गोदी में लेकर के रोने लगे। बेटा हम, उन्होंने कहा जैसे शायद ये हम पर अविश्वास कर रही हो, ये भरत ने सिखलाया हो, प्रसंग जरा बढ़ जाएगा, इसलिए संक्षेप में करते हुए आगे चल रहे हैं जहां हमको आवश्यकता है। अपने गुरु जी के पास में गए, अपने पहले पिताजी का श्राद्ध संस्कार किया, और इसके बाद में बोले जैसे हमको यहां नहीं रहना है, बड़ा भाई राज्य का मालिक होता है, उनको राज्य लौटा करके तब उनको लेकर के आऊंगा। इसलिए सारी अयोध्यापुरी के लोगों को लेकर के चल पड़े। कैकई ने कहा बेटा हमें भी साथ ले चलो। उन्हें कहा मैं तुम्हें नहीं ले चलता, जाओ कौशल्या मैया जी से पूछो, यदि वो कहती हैं तो चलो, हमारे साथ में नहीं जाना है। कौशल्या जी बड़े दयालु थे, उनको भी साथ ले लिया। महाराज वशिष्ठ जी और सब वहां के नगर के जितने भी बड़े बूढ़े थे सब उनको लेकर के चित्रकूट में पहुंचे। लक्ष्मण जी तो सोचा जैसे भरत जी राम को मारने के लिए आ रहे हैं, किंतु राम ने उन्हें समझाया, सब लोग वहां पर आए, भरत जी मिले, लक्ष्मण का रोष चला गया, उनको होश आया जी भरत तो ये प्रेम की सेतु है, उनका हृदय धुल गया, बड़े प्रसन्न हुए, सब लोग बैठे। रात में भरत जी गए कौशल्या मैया के, ले मैया मैं तुम्हारा पुत्र हूं ना तो हो, एक बात हम तुमसे कहते हैं, भैया राम को कहो जे भरत की इच्छा है जे आप अयोध्या चले, राम से तुम कह देगी तुम्हारा आदेश नहीं टालन करेगा, टालेगा जरूर आ जाए, तो तुम उससे कह दो एक बार कि पुत्र तुम अयोध्या लौट जाओ। कौशल्या जी ने कहा बेटा ये तो मैं नहीं कर सकती, मैंने कहा गलत कर रहा, गलत तो नहीं कहती है, ठीक कहता है, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों मैं ऐसा नहीं कहेगी? राम धर्म का सेतु है, हिमालय जैसा है, उसको कोई टला नहीं सकता, वो धर्म के विपरीत कोई काम नहीं कर सकता, और मैं गलत कह रहा हूं? नहीं बेटा, तुम तो प्रेम की मूर्ति हो, इसलिए मैं ना तो तुम्हारी, मैं तटस्थ यहां हूं, मैं ऐसा राम को नहीं आदेश। फिर वो गए कहां? वशिष्ठ महाराज के यहां। गुरु जी हमारी एक आकांक्षा पूर्ण कर दीजिए, मेरी एक प्रार्थना है, राम आपका शिष्य है, वो आपकी बात मानेगा, आप यदि कहीं अयोध्या लौट चलो तो वो लौट आएगा, और यह राज्य उनका है, उनके चरणों में मैं दे देता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, तुम ठीक हो या राम ठीक है मैं नहीं समझ पा रहा, हम देखते हैं तो तुम सब प्रकार से ठीक हो, और जब राम की बात देखता हूं देखता हूँ कि ये सब प्रकार से ठीक है, इसलिए मैं नहीं कुछ निर्णय कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और रोने लगे। फिर रात में आधी रात में गए सुनैना के यहाँ। सुनैना जानते हैं कौन है? सीता की मैया। जैसी भी कोई हो माँ, अपनी बेटी के लिए, बेटे से भी अधिक बेटी के लिए चिंतित रहती है। सीताजी वन में डोले, ये सुनैना जी चाहेंगी उनको बिच्छू सांप काटे, चोर डकैत वहां पर मिलेंगे, सोने के लिए कोई जगह नहीं, दिन रात पैदल चलना है वन में, डस सांप डस दे, कोई कुछ काट दे क्या सुनैना जी चाहेंगे? सुनैना जैसे उन्होंने कहा जी कल सभा बैठेगी और महाराज जनक के ऊपर में भार पड़ेगा, कौन ठीक है कौन बे ठीक है, और उसको वो आदेश देंगे, इसलिए आप उनसे कह दीजिए ये सीता जी वन में नहीं जाए, राम जी लौट जाए, आप उनको आदेश दे दें, हमारे तरफ में पक्ष में निर्णय दें, राम के पक्ष में नहीं। बोलिए मैं उनसे कह दूंगी किंतु मैं ऐसा नहीं कहूं जो आपके पक्ष में ही दे, वो जिसको सोचेंगे समझेंगे विचार करके कहें। दूसरे दिन सभा हुई, किसी ने नहीं माना, फर्क की बात, बड़े विवश हो गए, दीनहीन हो गए, बड़े निराश हो गए। सभा बैठी, एक तरफ में अयोध्या से आने वाले सभी लोग गृहस्थ लोग बैठे, दूसरी तरफ में वाल्मीकि से लेकर जितने चित्रकूट में ऋषि महर्षि जब थे सब लोग वहां पर बैठे, एक तरफ में राम और एक तरफ में राम के साथ में लक्ष्मण, दूसरी तरफ में भरत के साथ में, पूर्वाशियों के तरफ में मैया, सब चारों बैठी, बीच में इनको रखा गया जैसे हम बैठे हैं बीच में, यहां से सबको यहां पर जनक जी बैठे, उनके पास में इधर एक भरत एक तरफ में राम और ये सब, सभी लोग वहीं पर बैठे सुन रहे। उन्होंने राम से कहा, भरत जी से कहा कैसे यहां पर पधारे और सबको सभा जुटाई। उन्होंने कहा राम पिता के राज्य को छोड़कर के चले आए हैं यहां वन में, राज्य पर मेरा अधिकार नहीं है, बड़े भैया का अधिकार होता है, इसलिए मैं आया हूं कि आप उनसे कह दें अयोध्या को लौट करके राज्य संभाले। तुम्हारा कुछ कहना है? राम से कहा। उन्होंने कहा मैं पिताजी के आदेश से मैया के आदेश से वन में आया हूं, मैया मेरी कैकई भी है और पिता हमारे पिताजी तो ही है, इसलिए दोनों के आदेश से मैं वन में आया हूं, हमारा ये अधिकार है पिताजी का आज्ञा का पालन करना, इसलिए मैं फरियाद चाहता हूं, जब भरत आया है तो दोनों में हमारा कौन सा ठीक है आप हमको निर्णय करके बतलाएंगे, हम पालन करें। आप कहेंगे चले जाओ अयोध्या मैं लड़ जाऊंगा, और यदि कहेंगे पिता का आदेश पालन करने के बल में जाना है तो हम चले जाएंगे। उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया, किसको? शंकर जी उनके गुरु हैं, शंकर जी को प्रणाम किया, कहे प्रभु मैं विचलित सत्य से नहीं हो जाऊं, विचलित होने का डर है, इसलिए आप हमको शक्ति दीजिए और प्रेरणा दीजिए मैं सत्य को मैं कह सकूं, जो हमारी बात सभी लोग आनंद के साथ में मान लें। उन्होंने सोच करके प्रणाम करके उन्होंने कहा देखो एक बात है, धर्म के अवतार हैं ये राम, हिमालय की भांति हैं, पैसिफिक ओशन सबसे गहरा समुद्र है, 8-9 मील से भी नीचे गहरा, उसमें हिमालय को बैठा दिया जाए तो वो डूब जाएगा, डूबेगा ना, हिमालय कितना है 29,000 कितना
28
और उससे भी अधिक गहरा है पैसिफिक ओशन, उसमें डूब जाएगा किंतु हिलेगा नहीं, उसकी धारा में इधर उधर नहीं हिलेगा, एकदम वज्र की भांति स्थिर रहेगा। और भरत क्या है? प्रेम का महापैसिफिक ओशन है, राम है हिमालय और पैपिसी कृष्ण प्रेम का कौन है? ये भारत है। प्रेम मर्यादा फरजादा कुछ नहीं जानता, उसके ऊपर में रहता है। हिमालय नहीं हिलने से भी हिमालय को डुबा देगा तो राम को वो डुबा देगा अपने प्रेम में। इसलिए मैं समझता हूं कि भरत की जीत है और तुम्हारी हार है। तुम्हारी बात राम को माननी चाहिए, उन्होंने आदेश दिया। भरत जी बड़े प्रसन्न हो, जनता ताली बजा दिया, अब राम को लौटना होगा। इतने में फिर से उन्होंने भरत को संबोधन किया, देखो प्रेम की भी मर्यादा होती है। क्या मर्यादा होती है? प्रेम में जो जो प्रेम करता है अपने इष्ट से, राम तुम्हारा इष्ट है तो हाँ ठीक है, प्रेम अपने प्रेमी के लिए इष्ट देव के लिए ये चाहता है कि उसको सुख कैस किस बात में है ये देखना, अपना स्वार्थ नहीं देखना है। तुम अपने स्वार्थ के लिए राम को ले जाना चाहते हो या राम की प्रसन्नता के लिए ये विचार करो? जिसमें राम प्रसन्न हो इसका नाम है प्रेम। राम से कभी पूछा कि आपको किस विषय में प्रसन्नता होगी, अयोध्या लौटने में या बन जाने में? पूछा तो नहीं, तो तुम स्वार्थी है। प्रेम तो स्वार्थ में नहीं होता है, प्रेम अपना सर्वस्व प्रेमिक को दे देता है। राधा जी कहती हैं, आश्लिष्वा पादरतां पिनस्त्वा माम अदर्शनां मार्म हतां को रोधिता यथा तथा विदथा तो लंपटो मत प्राणाथस्तु। राधा कृष्ण के मिलित तनु चैतन्य महाप्रभु हैं, प्रेम के अवतार हैं, सबको प्रेम की बाढ़ में डुबा दिया। राधा भाव से एकदम विभावित होकर के कृष्ण ही हा कृष्ण कहते हैं। वो कह रहे हैं राधा जी के मूड्स में भाव से, क्या कह रहे हैं? कृष्ण हमें छोड़ करके मथुरा चले गए, ठीक है चले गए, वो वहां सुखी रहे, हम लोग उनके विरह में दुखी हैं। यदि कृष्ण हमें अपने पैरों तले रौंद भी दे, पीस भी दे विरह समुद्र में, किंतु हम कृष्ण का ही सुख चाहेंगे। यदि वहां पर सुखी हैं अपने रानियों के सहित तो वहीं सुखी रहे, मैं विरह में पड़ते पड़ते मर जाऊंगी तभी कृष्ण का सुख रहे। यदि कृष्ण हमारे पास में आकर के आलिंगन करे, हमें सुखी कराते हैं, तो इसी में मैं सुखी हूं। और यदि कृष्ण हमें छोड़ करके किसी दूसरी के यहां चले, यहां तक कि कुब्जा के पास भी चले जाए, तो हम कुब्जा की दासी होकर के उसकी सेवा करेंगे। ये प्रेम की उत्कृष्ट दशा है, इसको कहते हैं प्रेम। कृष्ण के लिए मैं सब कुछ सह सकती हूं, ऐसा प्रेम कोई कह सकता है? जगत में कहीं नहीं ऐसा। गोपियों का ये प्रेम निराला अनूठा है, इसकी कोई तुलना नहीं है, कोई उपमा नहीं है गोपियों के प्रेम की। भरत जी को शिक्षा दे रहे हैं, क्या प्रेम लेना नहीं जानता है देना जानता, अपना हृदय सर्वस्व लुटा देता है प्रभु के लिए इष्ट देव के लिए, इसी को कहते हैं भक्ति। इस जगत में उस जगत में कहते हैं प्रेम। यदि आपने राम की या कृष्ण की सेवा की और उसके बदले में चाहा कि हमको एक बेटा हो जाए, हे प्रभु आपकी बहुत भक्ति कर, तो ये क्या हो गया? भक्ति नहीं हुई, कैंसिल कर दो। हे प्रभु हमको संपत्ति मिल जाए, अपने आप संपत्ति मिल जाएगी भक्ति होने से, किंतु भक्त नहीं चाहता। भक्त क्या करता है? वो गली गली का भिखारी हो जाता है। हनुमान जी ने शादी की, उनके कहीं कुटी है? कोई है कुटी कहीं? जहां जहां पर हरि कथा होती है वहीं पर पहुंच जाते हैं, कोढ़ी का रूप धारण करके भी पहुंच जाएंगे हरि कथा, सबसे पीछे बैठ जाएंगे। मैं समझता हूं कि यहां पर हनुमान जी जरूर आ गए होंगे किसी, मैं हनुमान जी का क्या, मैं तो कहता हूं कृष्ण ही आ गए होंगे जरूर ये सब सुनने के लिए। उनका भी हृदय द्रवित हो रहा होगा, यदि भक्तों का हृदय द्रवित हो रहा है तो उनका क्यों नहीं होगा, जरूर आ जाएगा। इसलिए ये कहते हैं, समझाते हैं कि देखो प्रेम में ये इष्ट देव के सुख के लिए करो, अपने लिए मत करो। कौशल्या जी, कौशल्या कहते हैं जसोदा मैया कृष्ण को बांधती हैं ओखल में, उनका नाम दामोदर हो जाता। किस लिए बांधती? अपने सुख के लिए बांधती। किस लिए बांधा? नहीं, कृष्ण बिगड़ नहीं जाए। कृष्ण चोरी करता है, मक्खन चुराता है, ये करता है, वो करता है, ये कभी ऐसा गड़बड़ ना हो जाए। कृष्ण के लिए ही कर रही। कृष्ण एक दिन अपनी झिंगुली जरा फाड़ दी और शरीर में मिट्टी लगा लिया, कहीं से लोटपोट गए। यशोदा जी ने झट उनका कान पकड़ लिया, फिर करेगा तो ऊं करके रोने लग गए। ये रोना भक्ति है? ये किस लिए कर रही हैं? प्यार है, प्रेम है। कृष्ण से भी अधिक कृष्ण की चीजों को अधिक भक्त प्यार करता है, इस चीज को समझो। कृष्ण से अधिक कृष्ण की मुरलिया को लोग प्यार करते हैं। किस लिए? कृष्ण की अपेक्षा भी कृष्ण के जो भक्त हैं हमारे आराध्य है, इस चीज को समझो। आराधना सर्वेशां विष्णु आराधनम परम तस्मा परतरम दी तदीया नाम भगवान से भगवान के भक्तों का आदर होना चाहिए। कृष्ण से अधिक राधा जी का होना चाहिए, नहीं तो भक्ति नहीं होगी भाई, इस चीज को समझो। क्योंकि इनमें प्रेम है, उस प्रेम के वशीभूत कृष्ण हो गए। भरत जी की आंखें खुल गई, ओह आज तक मैंने गलत समझा, मैं ये सोचता था कि लोग प्रसन्न होंगे और मैं भी राम को यहां देख करके मैं प्रसन्न होऊंगा, मैंने ये नहीं सोचा जी राम को प्रसन्नता होगी कि नहीं। भरत जी ने कहा जी प्रभु राम के चरणों में गिर गए, आप क्यों कैसे प्रसन्न रहेंगे? उन्होंने कहा जी देखो वाल्मीकि जी ने तो इन्होंने जनक जी ने तो कह दिया जी तुम्हारी जीत कोई मेरी हार हो गई, तो मैंने अयोध्या का सारा राज्य ले लिया, मैं आज से राजा हूं। ठीक है तो ठीक है, अब ये 14 वर्ष तक राज तुम संभालो, हमारा प्रतिनिधि होकर के तुम राजा नहीं, मैं अयोध्या का राज ले लिया और तुम यहां पर रहो 14 वर्ष तक संभालो, एक दिन की भी देरी होगी इसके लिए मैं दायी रहूंगा, एक दिन का विलंब नहीं होगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। भरत जी ने कहा जी ठीक, अपनी आदेश रूपी खड़ाऊ हमको दे दीजिए। बस उनकी खड़ाऊ ले ली, सिर पर रखी, यही खड़ाव ही राजा रहेगी। और नंदीग्राम में उसको स्थापना की और उसके शानदार राज्य चलाने लगे। एक दिन मैया आई, कहकर उसको बिच्छू काट रहे हैं, डंक मार रहे हैं, किसको? राजभवन में, सुखी नहीं, तड़पती है, पागल हो रही है। एक दिन आई भरत के पास में, उसने संदेश वाहक को कहा जैसे कहो जैसे तुम्हारी मैया आई है। ओह राजरानी आई है, ठीक है महारानी जी को बुला लो, मैया को नहीं। जब जब निकट में आई तो उठ करके खड़े हो गए, महारानी जी नमस्कार है आपको, मैया ने कहा। कैकेयी ने कहा बेटा तुम एक बार हमें कह दो जीवन भर में, मैया बस बस इसी के लिए भूखे और प्यास, नहीं तो मैं पागल हो रही मर जाऊंगी। नहीं अब इस जन्म में नहीं, मैं मैया नहीं कर सकता, आप जाइए आपका पीछू जो डंग कर दे रहे हैं मार रहे हैं राजभर में वहीं पर रहिए, तपस्या कीजिए, ये आपके लिए तपस्या होगी शुद्धि के लिए, आप शुद्ध होइए। राम जगत के इष्ट है, उनके प्रति आपने ऐसा किया, लौट जाइए। लौट गए किंतु मैया नहीं कहा। जब रामचंद्र जी लौटे अयोध्या में, जब उनका राज्याभिषेक हो गया तो 14,000 वर्ष तक राज्य किया, उसमें 11,000 वर्ष के अंत में एक दिन गई, कह गई बेटा राम मैं तुमसे कुछ भिक्षा मांगने आई, भिक्षा मत मांगो, कहो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तो आप भरत को कह दी एक बार हमको मैया कह दे तो हमारा हृदय शीतल हो जाए। रामचंद्र जी ने अच्छा ठीक, उनको विदा कर दिया, भरत को बुलाया, भैया मेरी एक बात मानेगा? तो चिंता करने लगे, आज तक इनके कहे बिना उनके सारे आदेशों को पालन करता हूं, क्या बात हो गई ये कह रहे हैं ये हमारी बात एक माने, कोई बात जरूर है। तो उन्होंने कहा महारानी कैकेयी को मैया कहने के अतिरिक्त आप जो कुछ कहेंगे वो मान लूंगा, किंतु उनको ना कहने। यह प्रेम की सीमा, इसको कहते हैं भक्ति प्रेम। जिनके प्रिय न राम वैदेही तजी कोटि संबैरी जगत जद्यप परमशले तजऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजऊ कंत ब्रज बनितन भय जगमंडल। प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी यदि हमारे कृष्ण और राम के विरोधी हो उनसे कोई भी संबंध नहीं। जिनके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोटि बैरी सम यद्यप परमशले तजऊ पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया और प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया इसीलिए, और भरत ने अपनी मैया को, और बलि जी ने अपने गुरु को छोड़ दिया, और कनिता ब्रज की बनिताओं ने अपने पतियों को भी छोड़ दिया, किंतु उनका जगत में मंगल हुआ। ये तुलसीदास जी ने मीराबाई के लिए ये पत्र में लिख करके बतलाया था। उन्होंने कहा कि हमारे संसार के सब विरोधी हो गए हैं, पति भी, हमें मुझे क्या करना चाहिए, उसको उत्तर में ये दिया था। इसको सुनते ही बस घर से निकल गई, मेरे तो गिरधर गोपाल, पति उनके पीछे, सास ससुर भी उनके पीछे, किसी की बात नहीं सुने, वृंदावन में चलिए। फिर वृंदावन से द्वारकाधीश में मिल करके एक हो गए। इसको कहते हैं अपने सुख के लिए कुछ मत कामना करो, निरंतर कृष्ण की प्रीति। और कैसे प्रीति इसकी होगी तो व्याख्या कल करूंगा, आज बहुत ये हो गया मेरे लिए सुविधा। गौर प्रेमानंदे, जय 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 श्री राधे। एक वो बोलो तो देखो यहाँ पर बात कुल है, पूछो यार इसके बाद तो आरती होगी ना, कुछ यहाँ पर बात कुल निकट में
तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधे तेरो श्याम वृंदावन में देखो राधे
जोर से बोलिए
राधे तेरो श्याम नंदगावन में देखो देखो राधे वो तो माखन चुरावत भयो चारों वेद बखान करे यहाँ काम
Thank you.